नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से उत्पत्ति नामक पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं ये मधुर संगीत रचना।
यीशु तेरा पवित्र लहू, यीशु तेरा पवित्र लहू मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है, मुझको बचाता है, मुझको छुड़ाता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। ये यीशु तेरा पवित्र लहू, ये यीशु तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है, तेरा लहू चंगा करता है, तेरा लहू शिफा देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है। ये यीशु तेरा पवित्र
Thank you.
तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। तेरा लहू मुक्ति देता है, तेरा लहू शांति देता है। मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है, मैं जब भी गिर जाता हूँ मुझको संभालता है।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आपको नमस्कार। मुझे आशा है कि आप सब प्रतिदिन की तरह आज भी बाइबल अध्ययन के लिए तैयार हैं। हमारे नए श्रोताओं को बता दें कि इन दिनों हम उत्पत्ति की पुस्तक के 42 अध्याय से अध्ययन कर रहे हैं, और पिछले अध्ययन में हमने मिस्र में अनाज एकत्र करने, व यूसुफ का विवाह और पुत्र उत्पन्न होने और अनाज के वितरण का विवरण देखा था। हमने यह भी देखा कि याकूब के पुत्र अनाज लेने के लिए मिस्र देश में आए और उन्होंने यूसुफ को झुककर दंडवत किया। इसके द्वारा यूसुफ का स्वप्न जो उसने बचपन में देखा था कि सब पुले उसके पुले को दंडवत कर रहे हैं, यहाँ पर वह पूरा हो गया। आज हम इसके आगे अपने अध्ययन को बढ़ाते हैं, और सबसे पहले हम उत्पत्ति की पुस्तक के 42 अध्याय और उसके 7 और 8 पद को पढ़ेंगे, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा तो उनको पहचान गया, परंतु उनके सामने अनजान बनकर उनसे कठोरता से बोला, और उसने उनसे कहा, तुम कहां से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम तो कनान देश से अनमोल लेने के लिए आए हैं। परंतु यूसुफ ने तो अपने भाइयों को पहचान लिया था, यद्यपि उन्होंने उसे नहीं पहचाना। मित्रों, क्या आपको मालूम है कि उसने उनके साथ कठोरता से व्यवहार क्यों किया? वह उनकी परीक्षा ले रहा था। हम आगे देखेंगे कि वह उनकी और भी परीक्षाएं लेगा। वह उनसे कुछ भेदक या सूक्ष्म प्रश्न पूछने जा रहा है। आइए हम उत्पत्ति 42 अध्याय उसके 9 से 11 पद को पढ़ें, जहां पर हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब यूसुफ ने उन स्वप्नों को स्मरण करके जो उसने उनके विषय में देखे थे उनसे कहा, तुम जासूस हो, तुम हमारे देश की दुर्दशा को देखने आए हो। तब उन्होंने उससे कहा, नहीं हे स्वामी, तेरे दास तो अनमोल लेने के लिए आए हैं, हम सब तो एक ही पुरुष के पुत्र हैं, हम तो ईमानदार मनुष्य हैं, तेरे दास जासूस नहीं हैं। मित्रों, मेरा विश्वास कीजिए, यहाँ पर यूसुफ अपने मन की बात उंडेल रहा है। हम उत्पत्ति की पुस्तक के 42 अध्याय के 12 और 13 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने उनसे कहा, नहीं, तुम तो हमारे देश की दुर्दशा देखने आए हो। परंतु उन्होंने कहा, हम तेरे दास 12 भाई हैं और कनान देशवासी एक ही पुरुष के पुत्र हैं, और देख, सबसे छोटा इस समय हमारे पिता के पास है और एक जाता रहा। मित्रों, यहां पर वह जितना अधिक जानकारी अपने परिवार के बारे में प्राप्त कर सकता है उतना करना चाहता है, उन्हें बिना बताए कि वह कौन है, इसलिए वह उन पर दोष लगाता है कि वे जासूस हैं। यहां पर उसके सामने केवल 10 व्यक्ति हैं, वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि वास्तव में वे 12 पुत्र हैं और एक घर में पिता के साथ है और एक नहीं है, यही वे लोग सोचते हैं। दूसरे शब्दों में कहें कि यूसुफ मर चुका है, लेकिन वह उनके सामने यहां पर खड़ा है। अब तीसरी बार यूसुफ उन पर दोष लगाता है कि वे जासूस हैं। तो आइए हम उत्पत्ति 42 अध्याय के 14 से 16 पद को पढ़ें। यूसुफ ने उनसे कहा, मैंने तुमसे ठीक ही कहा, तुम जासूस हो, तुम इस प्रकार जांचे जाओगे। फिरौन के जीवन की शपथ, जब तक तुम्हारा सबसे छोटा भाई यहां ना आ जाए, तुम इस स्थान से ना जाने पाओगे। अपने में से एक को भेजो कि वह जाकर तुम्हारे भाई को ले आए, और तुम कैद में रहोगे, जिससे तुम्हारे कथन की जांच हो सके कि तुम में सच्चाई है कि नहीं। परंतु यदि नहीं, तो फिरौन के जीवन की शपथ, तुम निश्चय ही जासूस ठहरोगे। हम देखते हैं कि यूसुफ अपने छोटे भाई के साथ मिलने की कोशिश करता है। ये सब तो उसके सौतेले भाई हैं, परंतु विन्यामिन उसका अपना सगा भाई है और वह उसे देखना चाहता था, इसलिए वह उसे देखने के लिए इस प्रकार के तरीके को प्रयोग करता है। उत्पत्ति की पुस्तक 42 अध्याय के 17 पद में लिखा है, अतः उसने उन्हें 3 दिन तक बंदीगृह में डाल दिया। मित्रों, वह उन्हें नगर के बंदीगृह में डाल देता है और उनको ऐसा लगता है कि कुछ बुरा होने जा रहा है, पता नहीं आगे अब क्या होगा। तब हम उत्पत्ति की पुस्तक के 42 अध्याय के 18 पद में आगे पढ़ते हैं। तब तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो तभी तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। यदि वहां पर यूसुफ के भाइयों को एक संकेत दिया गया कि यूसुफ कौन था, वह वाक्य इस प्रकार था, वह कहता है कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं। स्पष्ट रूप से उन दिनों में याकूब और उसके परिवार के अलावा अन्य लोग भी परमेश्वर को जानते थे। वे इस बात को भी जानते थे कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग बलिदान के द्वारा ही है। जो भी हो, संभवतः इस प्रकार की बातें उनके जीवन में कोई उत्सुकता नहीं ला पाई, और हो सकता है कि इस व्यक्ति के ऊपर और अधिक संदेह उत्पन्न हो गया हो। इसने कम से कम परमेश्वर के लिए गवाही तो दी। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान में रख लें कि जब भी यूसुफ को गवाही देने का मौका मिला, उसने परमेश्वर के लिए गवाही दी और इससे नहीं चुका, और निश्चित रूप से वह यहां भी एक गवाही दे रहा है। वह हमेशा की तरह परमेश्वर की महिमा देता है जो उसके जीवन को चला रहा है। मैं समझता हूं कि कम से कम यूसुफ के कहे वाक्य कि मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, तो उसके भाइयों को उत्साहित होना चाहिए था कि यह उनके साथ न्यायपूर्ण और सही वर्ताव करेगा। हम उत्पत्ति की पुस्तक 42 अध्याय और उसके 19 और 20 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, यदि तुम सच्चे मनुष्य हो तो तुम में से एक भाई बंदीगृह में रहे, शेष तुम सब अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, और अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, जिससे तुम्हारी बातें सच प्रमाणित हो और तुम मार डाले ना जाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया। मित्रों, ये सब भाई अब लड़कपन से पुरुष हो गए थे, और इनमें से कुछ की आयु 50 वर्ष से भी अधिक की थी, और ये अपने आप को बड़ी दुर्दशा में पाते हैं। उनके साथ वो व्यक्ति व्यवहार कर रहा था जो परमेश्वर का भय मानता है, परंतु वे डर गए थे क्योंकि उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह उनके साथ क्या करने जा रहा है। वह उनकी परीक्षा लेने के लिए बहाना बनाता है कि देखें कि वे सही व्यक्ति हैं कि नहीं, लेकिन वास्तव में वह क्या चाहता है, यह कि उसका भाई अगली बार उसके सामने लाया जाए। फिर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 42 अध्याय के 21 पद में पढ़ते हैं, तब उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी हैं, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, हमने उसकी मानसिक पीड़ा को देखा, फिर भी उसकी ना सुनी, इसलिए यह संकट हम पर आ पड़ा है। मित्रों, यहां पर जो घटना घट रही है वह बहुत ही मजेदार है। वे आपस में इब्रानी भाषा में बातें कर रहे थे और यूसुफ उसे समझ सकता था। यूसुफ उनके साथ एक अनुवादक की सहायता से बातचीत कर रहा था, जबकि उसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह अपने आप को एक मिस्री के रूप में दिखा रहा था। वे सब वहां पर अपनी अपराध व गलती का सही पछतावा कर रहे थे। हम उत्पत्ति की पुस्तक के 42 अध्याय और उसके 22 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब रूबेन ने उत्तर दिया, क्या मैंने तुमसे न कहा था इस लड़के के विरुद्ध पाप न करो, परंतु तुमने न सुना। अब उसके खून का पलटा हमसे लिया जा रहा है। मित्रों, वे यह महसूस कर रहे थे कि जो कुछ भी हो रहा है वह उनके ऊपर परमेश्वर का बदला है जो उन्होंने यूसुफ के साथ किया था। इसके लिए हम आगे देखते हैं, शमौन अकेला बंदीगृह में छोड़ दिया गया। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 42 अध्याय उसके 23 और 24 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, वे तो नहीं जानते थे कि यूसुफ ने हमारी बातें समझ ली है, क्योंकि उनके बीच में एक दुभाषिया था और वह उनके पास से हट गया और रोया, परंतु जब वह उनके पास लौटा तो उनसे बातचीत करके उनमें से शमौन को अलग किया और उनकी आंखों के सामने उसे बंदी बना लिया। मित्रों, वे कहते हैं कि यह दुर्दशा उनके ऊपर इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने अपने भाई यूसुफ के साथ बुराई की थी। वे वास्तव में अब पश्चाताप कर रहे हैं। यूसुफ उनकी हर एक बातों को सुनता है और वह उनके लिए कायल होता है। वह उनके पास जाना पसंद करता है कि वह अपने बाहों को उनके कंधे पर रखे और प्रत्येक से गले मिलकर रोए और कहे, मेरे भाई। लेकिन वह ऐसा करने की साहस नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने से वह अपने भाई विन्यामिन को कभी भी नहीं पा सकता है। इसलिए अब वह उनकी एक कठिन परीक्षा लेता है कि वे अपने एक भाई को यहां पर छोड़कर जाएं, और यह शमौन है जो यहां कैद खाने में रुकता है। इन सब बातों के द्वारा यीशु भावुकता से भर गया और इसके कारण उसे रोना पड़ा, परंतु वह वहां से हट जाता है और अपने चेहरे को धोता है। इसके बाद वह फिर से अंदर आता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मित्रों, मुझे कुछ भी पता नहीं है कि उन्होंने शमौन को यहां रुकने के लिए क्यों चुना। मैं सोचता हूं कि जब यूसुफ वहां से बाहर गया, तब सब भाइयों ने शमौन को रोकने का निर्णय लिया और यूसुफ ने भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया। आगे हम उत्पत्ति की पुस्तक के 42 अध्याय और उसके 25 पद में पढ़ते हैं। तब यूसुफ ने आदेश दिया कि उनके बोरे अन्न से भर दिए जाएं और उनमें से प्रत्येक का रुपया उसी के बोरे में रख दिया जाए, और उनकी यात्रा के लिए भोजन वस्तु भी दी जाए, और उनके लिए ऐसा ही किया गया। मित्रों, वह उनके रुपयों को नहीं ले सका। उसने न केवल उनके अनाज की कीमत को उन्हें वापस लौटाया, परंतु रास्ते के लिए उन्हें भोजन भी दिया। तब आगे हम देखते हैं कि सिर्फ 9 भाई ही घर वापस लौटते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 42 अध्याय उसके 26 से 28 पद में लिखा हुआ है, इस प्रकार उन्होंने अपना अन्न अपने गधों पर लादा और वे वहां से चल दिए। सराय में जब एक ने अपने गधे को चारा देने के लिए अपना बोरा खोला, तो उसने अपना रुपया देखा और देखो, रुपया उसके बोरे के मुंह पर ही रखा था। तब उसने अपने भाइयों से कहा, मेरा रुपया लौटा दिया गया है, और देखो, वह तो मेरे बोरे में ही है। तब उनके जी में जी ना रहा और वे भयभीत होकर एक दूसरे को ताकने और कहने लगे, क्या यह क्या है जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया है। मित्रों, वे महसूस करते हैं कि यह उनके ऊपर परमेश्वर का न्याय है। साधारणतः यह अच्छी बात होती है जब आपके पैसे या रुपए आपको अद्भुत रीति से वापस मिल जाते हैं। मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि क्या आप एक अच्छे सुपर बाजार में अपने हफ्ते भर के सामान लेने के लिए जाना पसंद नहीं करेंगे? आप वहां जाकर अपने सारे राशन के सामान और पूरे परिवार के लिए सामान खरीदते हैं, और तब क्या आप घर आकर अपने उस राशन की बोरी को नहीं खोलेंगे या खोलना नहीं चाहेंगे? और आप पाते हैं कि सभी रुपए जो आपने राशन व परिवार के सामान के लिए दिए थे लौटा दिए गए हैं, तो क्या आप सोचते हैं कि यह खबर आपके लिए बुरी है? विशेषकर क्या यह आपको चिंता में डालेगी? यदि आपको यह पता लगेगा कि दुकानदार अपनी तरफ से आपको तोहफा या इनाम दे रहा है, तो क्या हम सब साधारण परिस्थिति में इससे सहमत नहीं होते हैं कि यह एक अच्छी खबर है? वास्तव में हम इसे एक उत्साह देने वाली बात मानेंगे। मित्रों, यह अच्छी बात है, पर यह इन मनुष्यों के लिए अच्छी नहीं थी। वे पहले से ही यह महसूस करते हैं कि वे इस कठोर शासक के साथ मुश्किल में हैं, जिसने उनके जीवन को कठिनाई में डाल दिया है। यह सिर्फ उनकी चिंता को बढ़ाता है। हमें आश्चर्य होता है कि वे तुरंत मिस्र देश में वापस क्यों नहीं चले गए। इस परिस्थिति में आप सबने क्या किया होता? मैं सोचता हूं कि वे उससे डर गए थे कि यदि वे वापस जाएंगे तो निश्चय ही उन्हें कठोरता का या मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और यह व्यक्ति उन पर चोरी का दोष लगा सकता है। इसलिए वे किसी प्रकार का मौका उसे नहीं देना चाहते थे, और वे घर की ओर ही बढ़ रहे हैं, यह सोचते हुए कि जब वे दोबारा आएंगे तो रुपया भी साथ में लेते आएंगे। मित्रों, आइए हम उत्पत्ति उसके 42 अध्याय के 29 से 34 पद तक को पढ़ें, जहां पर लिखा हुआ है, जब वे कनान देश में अपने पिता याकूब के पास आए, तो जो कुछ उनके साथ हुआ था वह सब कह सुनाया। उन्होंने कहा, जो पुरुष उस देश का स्वामी है उसने हमसे कठोरता से बातें की और हमें जासूस समझा, परंतु हमने उससे कहा, हम तो सच्चे मनुष्य हैं, हम जासूस नहीं हैं, हम 12 भाई एक ही पिता के पुत्र हैं, जिनमें से एक नहीं रहा, और सबसे छोटा इस समय कनान देश में हमारे पिता के पास है। और उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है हमसे कहा, मैं इससे जान लूंगा कि तुम सच्चे मनुष्य हो, कि तुम अपने एक भाई को मेरे पास छोड़ दो और अपने घर वालों की भूख मिटाने के लिए अन्न ले जाओ, परंतु अपने सबसे छोटे भाई को मेरे पास ले आओ, कि मैं जान सकूं कि तुम जासूस नहीं हो परंतु सच्चे मनुष्य हो। मैं तुम्हारे भाई को तुम्हें लौटा दूंगा और तुम इस देश में लेन देन करने पाओगे। मित्रों, इस बात को याद रखें कि उन्होंने अपने भाई शमौन को मिस्र में ही छोड़ दिया है। तब हम आगे उत्पत्ति 42 अध्याय के 35 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब ऐसा हुआ कि जब वे अपने अपने बोरे खाली कर रहे थे तो क्या देखा कि प्रत्येक जन के रुपए की थैली उसी की बोरी में रखी है। और जब उन्होंने और उनके पिता ने रुपयों की थैलियों को देखी तो वे अत्यंत डर गए। मित्रों, उन्होंने सोचा कि यह सचमुच में कोई चालाकी है। तब हम इसके आगे उत्पत्ति की पुस्तक 42 अध्याय के 36 पद में पढ़ते हैं, और उनके पिता याकूब ने उनसे कहा, तुमने मुझे मेरे बच्चों से वंचित कर दिया, यूसुफ नहीं रहा और शमौन भी नहीं रहा, और अब तुम विन्यामिन को भी ले जाओगे, ये सब विपत्तियां मुझ पर आ पड़ी है। मित्रों, बेचारा बूढ़ा याकूब, वह अब वो व्यक्ति नहीं जिसे हम पहले जानते थे, न ही वह विश्वास करने वाला व्यक्ति है जिसे हम थोड़ी देर में आगे देखेंगे, परंतु वह बढ़ रहा है। अब वह डिंग नहीं मार रहा है, परंतु वह बहुत निराशावादी है। वह कहता है कि सब वस्तुएं मेरे विरोध में ही हैं। उसके बेटे यूसुफ ने ऐसी बातें नहीं कही होती, परंतु याकूब यहां पर कह रहा है, यूसुफ ने वही कहा होता जिसे कई साल बाद प्रेरित पौलुस ने लिखा, रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसके 28 पद में लिखा है, और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। मित्रों, हम आगे फिलिपियों की पत्री उसके 1 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, मुझे इस बात का निश्चय है कि जिसने तुम में भला कार्य आरंभ किया है वही उस मसीह यीशु के दिन तक पूर्ण भी करेगा। फिर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 42 अध्याय के 37 और 38 पद में पढ़ते हैं, जहां इस प्रकार से लिखा है, तब रूबेन ने अपने पिता से यह कहा, यदि मैं उसे तेरे पास वापस लौटा ना ले आऊं तो तू मेरे दोनों पुत्रों को मार डालना, उसे मेरे हाथ में सौंप दे और मैं उसे फिर तुझे लौटा दूंगा। परंतु याकूब ने कहा, मेरा पुत्र तुम्हारे साथ ना जाएगा, क्योंकि उसका भाई मर गया है और अब वह अकेला ही बचा है। यदि तुम्हारी यात्रा में उस पर कोई विपत्ति आ पड़े तब तो तुम मुझे पके बाल वाले को शोक के साथ अधोलोक में उतार दोगे। मित्रों, याकूब का जीवन इस बालक विन्यामिन के जीवन से लिपटा हुआ था। अब यहां पर देखेंगे कि यूसुफ याकूब का सबसे चहेता व प्यारा पुत्र है, क्योंकि वह उसकी प्यारी पत्नी राहेल का पहला पुत्र था। अब यूसुफ नहीं रहा और यह उसके लिए बहुत दुखद बात थी। अब उसके आगे यह एक दूसरा मौका है कि वह राहेल के दूसरे पुत्र को भी कहीं खो ना दे, इसलिए वह कहता है कि यदि ऐसा होगा तो मैं मर जाऊंगा। बड़ी सरलता से ऐसा हुआ होता, क्योंकि पूर्ण रूप से उसका जीवन विन्यामिन के जीवन के साथ जुड़ा हुआ था। वह उसके दाहिने हाथ का पुत्र था, वह याकूब के बुढ़ापे का सहारा था, और इन पिछले वर्षों में अब तक तो वह यही कर रहा था। इसलिए याकूब कहता है कि वह उसे मिस्र देश में जाने नहीं देगा, और बेचारा शमौन इस बीच बंदी गृह में तड़प रहा था और परेशान था। मित्रों, यहां पर उत्पत्ति का 42 अध्याय समाप्त होता है, इसलिए निरंतर अध्ययन को हम बढ़ाते हुए उत्पत्ति की पुस्तक के 43 अध्याय से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। और इस अध्याय में हम देखते हैं कि अकाल की भीषणता अर्थात गंभीरता के कारण याकूब के पुत्रों को विन्यामिन के साथ दोबारा मिस्र देश में मजबूर होकर जाना पड़ा और यूसुफ के सामने हाजिर होना पड़ा। इस समय तक यूसुफ ने अपने आप को उन पर प्रकट नहीं किया था कि वह कौन है। मित्रों, उत्पत्ति की पुस्तक में यह अध्याय एक प्रभावशाली और संदेहपूर्ण है। मैं विन्यामिन का और यूसुफ के सामने उपस्थित होने के विषय सचमुच नहीं जानता हूं, जिस बात ने उन्हें फिर से मिस्र देश में आने के लिए मजबूर किया वह है भीषण अकाल। मैं समझता हूं यदि अकाल खत्म हो जाता तो ये लोग मिस्र में दोबारा नहीं जाते, अर्थात शमौन को जिंदगी भर बंदीगिरी में ही रहना पड़ता जब तक कि यूसुफ उसे नहीं छोड़ देता। आगे हम देखते हैं कि याकूब अपने पुत्रों को मिस्र देश भेजता है और विन्यामिन को भी। उत्पत्ति की पुस्तक 43 अध्याय उसके 1 और 2 पद में इस प्रकार से लिखा है, देश में अकाल भयंकर होता गया और ऐसा हुआ कि जब वह अन्न जिसे वे मिस्र देश से लाए थे समाप्त हो गया तो उनके पिता ने उनसे कहा, फिर से जाकर हमारे लिए कुछ भोजन वस्तु मोल ले आओ। मित्रों, याकूब ने इस बात को जान लिया कि यदि वे मिस्र में दोबारा अन्न लेने के लिए नहीं गए तो वे भूखे मर सकते हैं। तब हम आगे उत्पत्ति की पुस्तक 43 अध्याय उसके 3-5 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, तब यहूदा ने उससे कहा, उस पुरुष ने हमें दृढ़ता पूर्वक चेतावनी दी है, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना आए तो तुम मेरा मुंह देखने ना पाओगे। यदि तू हमारे भाई को हमारे साथ भेजे तब तो हम जाकर तेरे लिए भोजन वस्तु मोल ले आएंगे, परंतु यदि तू उसको न भेजे तो हम न जाएंगे, क्योंकि उस पुरुष ने हमसे कहा, यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ ना आए तो तुम मेरा मुंह देखने ना पाओगे। यहां पर हम देखते हैं कि वह पुरुष उनका भाई है, लेकिन वे इसे नहीं जानते हैं। उसने उन्हें एक कठोर प्रस्ताव दिया और वे इसे जानते थे कि वह ऐसा ही करेगा। यहूदा अपने पिता से निश्चित तौर से कहता है कि यदि हम वहां जाएं तो हमारे साथ बिन्यामीन का होना आवश्यक है, यदि आप उसे इस समय नहीं भेजेंगे तो हमारे जाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वह पुरुष हमें नहीं देखेगा। मित्रों, हमारा समय यहां पर समाप्त होता है, इसलिए आज के इस अध्ययन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन अगले अध्ययन में हम इसके आगे की घटनाओं पर विचार करेंगे। इसलिए आप सब अगले कार्यक्रम को अवश्य सुने। प्रभु आप सबों को अपनी आशीष व शांति प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।